भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बारती है।
ओम शांति। हम सबका ये बड़ा सौभाग्य है जो इस तपस्या भूमि में अलग अलग क्षेत्रों में बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के लिए जो निमित्त बने हैं। ऐसे बहुत शक्तिशाली इंस्ट्रूमेंट्स का हमें आज लाभ मिल रहा है। पिछले 25 वर्षों से दिल वालों का एक ऐसा ग्रुप तैयार किया है जिन्होंने दिलों में बाबा को भर करके बाबा को प्रत्यक्ष करने का बीड़ा उठाया। मिलेनियम डॉक्टर का जिन्हें विश्व स्तर पर अवार्ड मिला है, ऐसे बाबा के एक अति अमूल्य रतन डॉक्टर सतीश भाई हम सबके बीच में है, जो ट्रॉमा सेंटर को भी बहुत सुचारू रूप से संभाल रहे हैं। दोनों ही प्रकार के डॉक्टर बनकर के दिल और दिमाग दोनों को ही राहत, ये आपकी बहुत बड़ी विशेषता है। ज्ञान का इतना गहराई से आपके पास मनन और चिंतन है और इतना लॉजिकल वे से आप बाबा की बातों को सामने रख देते हैं, जो कोई भी कन्विंस होने के लिए बहुत सहज तैयार हो जाता है। ऐसी एक विरल व्यक्तित्व, विरल आत्मा आज हम सबके बीच में है। कैट का जो प्रोग्राम चल रहा है, बहुत सारी आत्माओं ने मेडिटेशन का प्रयोग करके अपने स्वास्थ्य को भी बहुत लाभ दिया है। एक राजयोगी की लाइफस्टाइल क्या होती है, बहुत व्यवस्थित रूप से इसको आपने प्रत्यक्ष किया है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आज का जो हमारा विषय है, मेरा कौन, एक बाप दूसरा न कोई, और बाप की ही छत्र छाया में सर्व संबंधों का अनुभव हमें बढ़ाते जाना है। और सर्व संबंधों से जब बाबा को हम अपना बनाएंगे, वही वास्तव में मेरा है। अपने अनुभव सहित आज बाबा से सर्व संबंधों को कैसे निभा करके मेरा कौन दिल में हम अच्छी तरह बिठा दें, इस पर अपने अनुभव युक्त बातें हम सबके बीच रखेंगे आदरणीय डॉक्टर सतीश भाई।
ओम शांति। देखो, महादेव नगर को सबसे पहली पहली बट्टी मधुबन की मिली। सभी को अच्छा लग रहा है यहाँ पे? तो मधुबन तपस्या भूमि है, बाबा की चरित्र भूमि है, तो इसमें हम आज इसी बात पर मनन चिंतन करेंगे कि हम मेरा कौन है। बाप की छत्र छाया में एक बाप से ही सर्व संबंधों का अनुभव हम करें, कैसे करें? सर्व संबंध किससे अनुभव होते हैं? हमारे जो हम जो जिससे हमें संबंध की अनुभूति होती है, ये किसकी याद हमें आती है? चलो, मेरा कौन की बात है ना, मतलब मेरा कौन, तो किसकी याद आती है दुनिया में हम लोग जो होते हैं, तो हमें किस किसकी याद आती है? किसकी याद आती है? अपने बच्चों की याद आती है, अपने माता पिता की याद आती है, भाई बहनों की याद आती है, जो हमें पढ़ाते हैं टीचर उनकी याद आती है, और कोई हमने बचपन में कभी गुरु किया हो या कभी भी गुरु, उसकी याद, उसकी शिक्षाएं याद आती है, जिससे हमारा बहुत प्रेम रहा हो उसकी याद आती है, ऐसा ही होता है। तो ये याद किसकी याद आती है, उनकी याद हमें क्यों आती है? अब जैसे हम बाबा के बन गए तो भी बाबा की याद करनी पड़ती है ना, अपने आप आती है क्या? जब भी योग करने बैठते तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं? अपने आप रियलाइज करने की कोशिश करते हैं, मैं आत्मा हूं, नहीं नहीं करते। हमें 10 साल 20 साल 25 साल 40 साल ज्ञान में हो गए तो भी हम जब योग करने बैठते हैं तो, जैसे मान लीजिए आपने एमएससी शुरू किया और एमएससी करते टाइम भी आप शुरुआत क्लास में बैठ के करो, ए फॉर एप्पल, किताब पढ़ने के पहले ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, ऐसे करते हैं, फिर पढ़ना शुरू करें ऐसे। और अभी तक हम क्या करते हैं, सभी बैठते ही पहले ऑटोमेटिक चलते फिरते वो स्थिति रहे, मैं आत्मा हूं, शिव बाबा की संतान हूं, शिव बाबा मेरे साथ है, क्यों नहीं रहती है? कहते हैं हम बाप की छत्र छाया है, बाप से हमारे सर संबंध है, क्यों क्यों नहीं रहता? बॉडी कॉन्शियस की बहुत सारी लेयर्स होती हैं। एक्चुअली क्या है, बिल्कुल ठीक बात है, किंतु मुख्य बात है जिसकी जिसको हम अपने दिल में रखते हैं ना, ये दिल नहीं, इस दिल में तो कोई रह नहीं सकता, रह सकता है? इस दिल में तो चार खून से भरे चैम्बर है और वहां खून में नहाता रहेगा अगर कोई हो भी तो, ऐसा और फिर 70 बार तो उसको अंदर बाहर होना पड़ेगा ना, नहीं एक मिनट में 70 बार है ना, एक दिन में 1,00,000 बार अंदर बाहर होना पड़ेगा ना, तो इस दिल में तो कोई रह नहीं सकता है ना, इस दिल में तो सिर्फ ब्लड ही ब्लड भरा हुआ है। किंतु कौन सा दिल, जो दिल की हम बात करते हैं, कौन से दिल की बात? आत्मा का दिल है ना, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, कॉन्शियंस भी कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं, तीसरी आंख भी कहते हैं, गोदी भी कहते हैं, पलकों की छाव भी कहते हैं, पलके कहते हैं बाबा अपनी पलकों में बिठा के हमको ले जाता है, वो दिल, वो कॉन्शियसनेस। तो उस दिल में किसकी याद है, उस दिल में कौन बैठा है, कौन बैठा है? बाबा नहीं बैठा होता, बाबा बैठा हो तो याद सदा रहे, है ना? सबसे पहले तो अपनी देह बैठी है उसमें ना, हमारी देह में थोड़ा सा कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कोई घुटना खराब है, 10 लोगों को बताते मेरा घुटना खराब हो गया है ना, ब्लड प्रेशर हो गया है, तो ब्लड प्रेशर की कॉन्शियसनेस में रहता है ना हमेशा, डायबिटीज हो गई तो, हार्ट की बीमारी हो गई तो वो ना, छोटी सी बात कोई बच्चे को कुछ ऊपर नीचे हो गया तो, बच्चों का एग्जाम है तो वो, नहीं नहीं ऐसा रहता, रहता नहीं रहता। युगल, हमारे युगल जिसके भी, जैसे युगल है या माँ बाप है, माँ को कुछ हो गया, बाप को कुछ हो गया, नहीं, दिल में एक्चुअली वो बैठे हैं, दिल में वो बैठे हुए हैं जिनसे हमने अनुभव किया हुआ है, थोड़े से सुख का, अल्पकाल के सुख का, अल्पकाल की प्राप्ति की हुई है, माँ से, बाप से, भाई बहनों से, टीचर से कुछ सीखा हुआ है, नहीं ऐसा नहीं? जो पति पत्नी बने उनसे कुछ, थोड़ा सा बच्चों से, तो वो अनुभव थोड़े सुख की अनुभूति उनसे की है, वो भी अल्पकाल की, हद का सुख उनसे अनुभव किया हुआ है, उसके कारण वो बुद्धि में बैठे हुए हैं और इसलिए उनकी याद ऑटोमेटिक रहती है। और हम बोल भी देते हैं यूजली, मेरे ऊपर मेरे, अभी मेरे दादा की छत्र छाया है, मेरी माँ की छत्र छाया मेरे ऊपर है ना, ऐसे नहीं बोलते। जो दिल में है, जो बुद्धि में है ना, उसकी याद ऑटोमेटिक रहती है। किंतु बाबा, इस बाबा की एक शर्त है, जो शिव बाबा है ना, बेयर का बाप है, उसकी एक शर्त है, वो कहता है अपना दिल रूपी कमरा खाली करो तो मैं आऊं, है ना? नहीं ऐसा, दिल रूपी, इवन ये फीलिंग करना मैं बहुत ज्ञानी आत्मा हूं, मैं बहुत अनुभवी हूं, मैं 40 साल से ज्ञान में हूं, 30 साल से ज्ञान में हूं, तो ये भी अगर हमारे दिल में आ गया ना, बुद्धि में आ गया, तो बाबा हमारे दिल में नहीं आता। तो बाबा को बिल्कुल खाली कमरा चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? इसलिए बाबा ने जो गीता में महावाक्य, महावाक्य क्या है जो बाबा समय समय पर, लगभग मैं समझता हूं हर अल्टरनेट डेज मुरली में आता है, चार बातें बाबा ने कहा हुआ है, अगर चार बातें दिल में से निकालो या बुद्धि, दिल हम सब बुद्धि की और गहराई में जाएंगे कि देह अपनी देह, देह के सर्व संबंध, सर्व माने सब कुछ, माता पिता भाई बहन टीचर सब जो भी गुरु बंधु सखा दोस्त होते हैं जो हमारे, उन सबको बुद्धि से निकालो। संपर्क भी, संबंध बाबा संपर्क नहीं बोलता पर संपर्क भी मैंने देखा, संपर्क भी होते हैं ना जिनसे हमारे कनेक्शन होते हैं ना, हमारे कनेक्शन होते हैं, मतलब बिजनेस में कनेक्शन है हमारे, कुछ भी जो भी हम काम करते हैं लोगों से कनेक्शन होते हैं, संपर्क होते हैं, कॉन्टेक्ट होते हैं, तो उनको भी उनको भी बुद्धि से निकाल देना चाहिए। तो देह, देह के सर्व संबंध संपर्क और देह के स्वभाव, देह के स्वभाव कौन से होते हैं? आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव ये सात गुण है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, प्रेम कौन से वाला? रूहानी प्रेम, रूहानी प्यार, और सुख, सुख कौन से वाला? अतीन्द्रिय सुख, आनंद और सर्वशक्तियां। ये आत्मा का स्वभाव है। स्व माने आत्मा, स्व माने मेरा, तो जब मैं आत्मा हूं तो मेरा ये भाव है, ये मतलब मेरी नेचर है, भाव माने नेचर, तो ये आत्मा का स्वभाव है। कि देह का स्वभाव क्या है? देह का स्वभाव, देह की नेचर क्या है? देह फील होते ही क्या आएगा आपके मन में? देह फील होते ही काम विकार आता है। जैसे ही हम जैसे द्वापर में आए ना, त्रेता से द्वापर आए, अपने देह को देखा, दूसरे के देह को देखा, सबसे पहले काम विकार आया। तो काम देह की नेचर है, अपने को देह फील करते ही काम विकार आता है। काम विकार बेशक अभी काम विकार उस रूप में नहीं आएगा, कामना इच्छा के रूप में आएगा, मैं इससे बात कर लूं, है ना, इसे पूछूं, है ना, कुछ ना कुछ इच्छा के रूप में आएगा, कामना के रूप में आएगा, है? फिर क्रोध, ये देह की नेचर है, लोभ, देह है ना, इसके लिए सब कुछ चाहिए ना, लोभ आएगा, फिर मोह आएगा, कोई साथी भी तो चाहिए ना, साथी बच्चा कोई पूछने वाला, ना? फिर अहंकार आएगा, जो कुछ प्राप्त हुआ वह अहंकार। तो देह के साथ जो है ये नेचर है, देह समझते ही, जैसे अगर आग के पास जाओ तो क्या फील होता है? गर्मी मांग गर्मी गर्मी लगती है ना, क्या मांगनी पड़ती है? और झील के पास जाओ तो, पानी की झील के पास जाओ तो ठंडी हवा आएगी ना, वहां से गर्म हवा आएगी, वहां से ठंडी हवा आएगी, तो नेचुरल है। जैसे ही अपने को आत्मा समझो कि ऑटोमेटिक फील हुआ, ये जो ज्ञान, ये फील हुआ कि मैं ये नहीं, मैं ये हूं। पवित्रता, ये भी ये है ना, मैं भी ये हूं, एक ही बाप के तो बच्चे हैं। शांति आएगी, शांति माना उसकी गहराई में बाद में जाएंगे, शांति आएगी। फिर रूहानी प्यार पैदा होगा, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति आएगी, मैं भी आत्मा, मैं भी अजर अमर अविनाशी हूं, ये भी अमर है, मैं भी अमर हूं, और अमर अमर बाप की संतान है, अतीन्द्रिय सुख की आनंद की अनुभूति आएगी और शक्तियों की अनुभूति आएगी। और जैसे देह समझाते हैं, पांच विकार आते हैं, और फिर देह के संस्कार, आत्मा का संस्कार क्या है, और देह संस्कार में आदत, आत्मा की जो आदत है, जो देह के संस्कार ज्यादा याद रहते हैं उसको हम अच्छे से पहले समझते हैं, उसके अपोजिट में वो आत्मा का संस्कार ले। देह का संस्कार आलस, पहला नंबर वन संस्कार में आदत, आलस से है। जैसे ही मौका लगा क्या लगेगा, थोड़ी देर सो जाओ, आंख बंद कर लो, है ना, सुबह से सुन रहे हैं, सुबह से बैठे हैं, है ना, सारा टाइम आंख खोल के थोड़ी योग होता है, आंखें बंद करके कर लेते हैं, फिर उसके साथ में एक गली है, नींद की गली है ना, उसके साथ आंखें बंद करने के साथ में गली कौन सी है, नींद की गली है ना, तो आलस आलस के साथ नींद आ जाएगी ना, तो आलस अलबेलापन, दूसरा अलबेलापन है ना, तीसरा दूसरों में दोष निकालने की आदत। कुछ भी हो जाए, कोई भी आदमी कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, अपने मैंने गलत काम किया तो क्या बोलेंगे, इसने ऐसा किया ना तो मैंने ऐसा किया, गलती उसकी थी, अपनी गलती कभी भी कोई व्यक्ति भी काउंट नहीं करता है। देह जिसके अंदर देह भान है ना, बॉडी कॉन्शियसनेस है, वो कभी अपनी गलती नहीं मानेगा। आप सोचो कभी तो इसको रियलाइज होगा, किंतु कभी रियलाइज नहीं होता है। देह भान वाले को, जिसको आत्मिक भान है उसको रियलाइज होता है कि हाँ ये मेरी गलती है। घरों में ऐसा होता नहीं होता, लौकिक परिवारों में ऐसा होता ना, वो कितना तंग करते हैं, कितना कुछ कहते हैं, किंतु कभी रियलाइज नहीं करते कि हमने कुछ गलत किया है। तो दूसरों में दोष निकालने की आदत होती है उनकी, इसने ऐसा किया तो मैंने ऐसा किया, बदला लेने की भावना, जरा सा कोई कुछ कर दे उसको अंदर बैठा लेते हैं, शक करना ये देह की आदत है, अनुमान लगाना देह की आदत है, देह भान की नेचर और देह भान की आदतें हैं ये, है ना, चिंता करना देह भान की आदत है, डर लगना देह भान की आदत है, प्रेशर में रहना हमेशा देह भान की आदत है, और ईर्ष्या द्वेष करना, कंपटीशन कंपैरिजन करना देह भान की आदत है। इसकी वजह आत्मा की क्या आदतें हैं, आत्मा आलस, आत्मा की नेचर नहीं आलस करना, आत्मा की नेचर जागती ज्योत, सदा अलर्ट है ना, जब आत्मा जब शरीर सो रहा है रात में नींद में तो आत्मा सो जाती है क्या? आत्मा सो जाए तो क्या हो, हार्ट चले, सांस आएगा, पेट में खाना पचेगा नहीं पचेगा, तो आत्मा तो तब भी जागती रहती है, आत्मा सोती नहीं है, सोती है क्या? आत्मा सदा जागती ज्योत है, जब तक शरीर के अंदर है, शरीर के बाहर भी जागती ज्योत है और शरीर के अंदर भी जागती ज्योत है, अलर्ट है सदा, अलबेलापन नहीं होता आत्मा में कभी, वो एक्यूरेट है, कितने मिनट में, एक मिनट में कितनी बार धड़कन होनी चाहिए, 70 बार धड़कता है, 68 बार नहीं है ना, हाँ आप कुछ गुस्सा कर लो तो हो सकता है 90 बार धड़के, है ना, किंतु वैसे अदरवाइज एक्यूरेट, हर काम एक्यूरेट नहीं करती है, टॉक्सिन्स बनते हैं बॉडी में, हमारी एक कोशिका में, हमारा शरीर 80,000 अरब कोशिकाओं से बना हुआ है, और उसमें हर कोशिका में 1,00,000 रिएक्शन 1 सेकंड में हो जाती है, 1,00,000 और 1,00,000 टॉक्सिन्स के टॉक्सिन जो बनते हैं ना उसमें, वो भी साफ 1 सेकंड में हो जाते हैं, 1 सेकंड कितना होता है ऐसे बस, इतनी देर में 1,00,000 रिएक्शन 1 सेल में हो गई, उसको 80,000 अरब से गुना करो, 80,000 अरब से कितनी कितनी रिएक्शन होती है, आपको रोटी बनाने में कितना टाइम लगता है, कहीं थोड़ा जाना हो 5 किलोमीटर कितने 5 मिनट तो लगते हैं ना, किंतु बॉडी में कितना काम हो रहा है, ये सब आत्मा कर रही है, डेड बॉडी में तो कुछ भी नहीं होता है, नहीं होता ना, तो कितनी अलर्ट है, कितनी एक्यूरेट है आत्मा, उसमें जरा भी क्या नहीं है, दूसरे पे दोष नहीं निकालती है, आत्मा गुणग्राही होती है, गुणग्राही, सबसे गुण लेने की, जब आत्मिक भान में तो गुण लेने की कोशिश करते है ना, और फिर आत्मा क्या करती है, बदलने की भावना नहीं रहती है उसमें, क्या होता है, रहम दिल होती है, किसने कुछ भी कर दिया रहम दिल, चलो उसने किया कोई बात, उस पर रहम आता है, कोई हमारे प्रति गलत करता है रहम आता है उसके प्रति, उस पर ये नहीं आता इसको मैं ऐसे करके दिखाऊं, नहीं, और फिर शक नहीं निश्चय, हम एक ही बाप के बच्चे हैं आपस में भाई भाई, कभी शक नहीं आएगा ये ऐसा सोच रही, ये ऐसा तो नहीं कर देगा, ये ऐसा तो नहीं कर, जैसे आता ना वहम, अहम और वहम भाव ना, उसमें अहम वहम नहीं होता है, आत्मिक स्थिति में अहम वहम होता ही नहीं, तो ये जो है इसमें वहम रहता है ना, शक अनुमान, अनुमान नहीं विश्वास, चिंता नहीं निश्चिंत बेफिक्र, भय नहीं निर्भयता, जल्दीबाजी नहीं हर बात में धीरज पेशेंस, धीरज धैर्यता, ईर्ष्या द्वेष नहीं क्या, सर्व के प्रति उदारता, सर्व के प्रति उदार भाव होता है, सबको समा लेने की बात, ईर्ष्या द्वेष नहीं, तुम आगे बढ़ रहे हो अच्छी बात है, पहले आप आगे, आप जाओ आगे जाओ, दुनिया में क्या होता है, पहले कोई आपसे निकले तो उसकी टांग खींच के पीछे कर देते हैं, तो ये सब चीजें आत्मा की भाव है, ये आत्मा के संस्कार है, और मैंने बताया देह के संस्कार ये, तो देह, देह के संबंध, सर्व संबंध संपर्क, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ को, ये बाबा की श्रीमत है, डायरेक्शन है, को पहले बुद्धि से त्याग, दिल से निकालो पहले, जब तक इनको दिल से नहीं निकालेंगे, बुद्धि से नहीं निकालेंगे, तब तक अपने को आत्मा समझ नहीं सकते, नहीं तो फिर वही होता है जैसे ना, बस जब भी बैठो, जब भी योग करना बैठो तो फिर मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली थी सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा। और ये भान ऐसे निकल नहीं सकता है, हम सोचे ऐसे निकल जाएगा, चलते फिरते उठ, योग कौन कर सकता है, जो चलते फिरते अपने आप से बातें करता रहे, मनन करता रहे, चलते फिरते उठते हर कर्म करते, नहीं मैं देह नहीं हूं, मैं तो यहां हूं, मैं यहां बैठा हूं, मैं यहां बैठा हूं, यहां मैं बात ही सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा यहां बैठा हूं, मैं चला रहा हूं शरीर को, मैं हार्ट को चला रही हूं, मैं आंखों से देख रही हूं, मैं कान से सुन रही हूं, मैं मुख से, मैं शरीर से निकल जाऊं तो सब बंद हो जाएगा। ब्रश करते भी क्या रहना चाहिए, सबसे मुश्किल याद कहां पे रहती है बाबा की बताओ, बाथरूम में बाथरूम में होते ना, क्योंकि बाबा कहते हर कर्म करते बाबा की याद रहे, मैं जब चार्ट भरता, मैं घंटे घंटे के चार्ट भरते हैं ना, घंटे घंटे कितने मिनट याद रही, तो वहां पर हम भूल जाते कि वो ब्रश करते हुए शेव करते भूल जाते कि भी अभी बाबा की याद, चेहरा देख रहे होते हैं तो बाबा की याद तो भूल जाती है, तो वहां कितनी याद रही बाबा की। फिर मैं अपने आप से बात करता हूं, अच्छा मुर्दा कभी ब्रश करता है क्या, तो करने वाला कौन, मैं आत्मा है ना। फिर शेव करते करते मुर्दा कभी शेव करता है क्या, शेव करते हैं कभी मुर्दा, कभी नहीं करते। तो फिर वो ये मतलब ये अपने आप को बार बार याद दिला, नहीं मैं आत्मा कर रही हूं शेव, जब मैं शरीर छोड़ के चला जाऊंगा तो कोई शेव नहीं करेगा ने? ऐसे मतलब अपने आप को हर कर्म करते बार बार याद, मैं आत्मा कर रही हूं, 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 तो बाबा अपने आप बुद्धि में आ गया। मतलब हर समय याद रहनी चाहिए ये, बार बार अपने आप को अभ्यास करना, मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं, मैं स्थूल देह को चलाने वाली आत्मा, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा। जैसे अपने को आत्मा समझेंगे तो बाप की छत्र छाया है, ये बाबा की पहली श्रीमत है। बाबा को याद करना ऐसे नहीं कि बैठ गए और याद आ, किरणें आ रही हैं, किरणें आ रही हैं, किरणें कोई आती नहीं है, किरणें कोई होती भी नहीं है, ये तो बाबा की। जब बाबा को याद कैसे करेंगे, बाबा को याद आपको, आपको बच्चा, आपके बच्चा आपके सामने बैठ जाए, आपको आपकी महिमा करना शुरू कर दे, पिताजी आप, माताजी आप, तो आप तो गुणों की सागर हो, आप तो ऐसी हो, कहना माने नहीं, आप कर बैठे, उठो ना, उठ के टाइम पे नहा धो लो, टाइम पे ऐसे करो, टाइम पे सैर करने जाओ, टाइम पे खाना खाओ, ऐसे अपना काम धंधा करो, वो सब कुछ नहीं करेगा, बस उठते ही आपको ना बैठ के और आपकी महिमा करना शुरू कर दे तो आप खुश हो जाएंगे। पैसे कमा के लाए नहीं है ना, जो बाबा की श्रीमत, पहली पहली श्रीमत कौन सी है बाबा की, बच्चे देह मानी भाव, अपने को आत्मा समझ के हर कर्म करो, तो पहली पहली डायरेक्शन में फॉलो करो तो बाबा की याद है ना, तो बाबा, तो बाबा की याद तो वर्षे में मिल गई ना मुझे, अगर बाबा की श्रीमत रूपी हाथ मेरे साथ है, बाबा का श्रीमत ही हाथ है, बाबा की श्रीमत ही साथ है, अगर वो है तो बाबा की छत्रछाया मेरे ऊपर। छत्रछाया क्या माना, क्या बाप कौन है, बाप ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर है, सर्वशक्तिमान है। और बाप कितनी दूर है हमसे, बाप कितनी दूर है बोलो, बोलो अहमदाबाद महादेव नगर कितनी दूर है यहां से बोलो, 200 किलोमीटर, 216 किलोमीटर, 200। और यहां बैठे बैठे जा सकते हो अहमदाबाद महादेव नगर, जा अपने कमरे में, अपने ड्राइंग रूम में जा सकते हो, बैठे बैठे जा सकते हो ना, सोचा और पहुंचा, नहीं सोचा और पहुंचा, ऐसा कि नहीं, ऐसा नहीं कि यहां सोचो सोचो पहुंच गए, नहीं पहुंच गए, किचन दिखाई दे रही है माता जी आपको, अपने किचन, गैस दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, बेटा दिखाई दे रहा है आपको, अपना दिखाई दे रहा ना, तो मतलब यहां सोचा और पहुंचा, बाप कितनी दूर है हमसे, सोचे और पहुंचा, एक बार सोचा बाबा को, सोचा बाबा, बस पहुंच गए। सूक्ष्म बंधन कितनी दूर है हमसे, सोचा और पहुंचा, परमधाम कितनी दूर है, सोचा और पहुंचा, नहीं तो बस इतनी दूर है ना। तो जैसे ही हम अपने को आत्मा समझते हैं तो बाबा तो यही है, बाबा तो आत्मा का बाप है ना, उसकी तार तो मेरे तक आई हुई है, मैं सिर्फ इस कमरे में बैठा हूं, जैसे बाहर धूप है किंतु मैं इस कमरे के अंदर बैठा रहूं हॉल में तो मुझे धूप लगेगी, मैं इस कमरे से बाहर निकलूं धूप लगेगी ना, तो ऐसे ही जैसे मैं अपने को आत्मा समझता हूँ धूप लगनी शुरू हो जाए। धूप माना बाबा की जो सातों एनर्जी कहो सात गुण कहो वो मेरे अंदर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जब तक हम इसका चलते फिरते अभ्यास करेंगे, ये जब चार चीज को छोड़ेंगे ना, देह देह के सर्व संबंध संपर्क, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ, अपने आप से बात करने की आवश्यकता, ये मेरी माँ नहीं है, वो मेरी माँ, शिव बाबा शरीर की माँ ये है कि तू मैं जो आत्मा हूं उसकी माँ तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा, शिव बाबा ही हमारी माँ है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा माँ की पालना और प्यार दे रहे, शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा मुझे जन्म दिया, दिव्य जन्म ब्राह्मण जन्म दिया, ब्रह्मा बाबा ने नहीं दिया, किसने दिया, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा दिया, राइट। ब्रह्मा वैसे मेरी बड़ी माँ है किंतु शिव बाबा उससे भी बड़ी माँ है, जन्म अगर ब्रह्मा बाबा खाली होता शिव बाबा ना होता तो ब्रह्मा बाबा जन्म दे सकते थे हमको, दे ही नहीं सकते थे, तो जन्म देने वो असली माँ भी हमारी शिव बाबा ही है, राइट, और बाप भी है। तो ऐसे मतलब अपने आप चलते फिर मेरा बाप वो है ना, तो एक एक संबंध की अनुभूति, अनुभूति करना माना क्या, अनुभूति देखो क्या होती है, मैं सिस्टमेटिक ढंग से जाना चाहिए, वैसे मैं साइड ट्रैक कर रहा हूं। अनुभूति कैसे होती है, अनुभूति माना अनुभव करना, रियलाइज करना। अब मन में चार एस्पेक्ट होते हैं मन के, है ना, स्मृति पहले होती है, संकल्प सबसे इंपॉर्टेंट चीज, संकल्प होती है, संकल्प से फिर भावना बनती है, ऐसे हम कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं टीम, मन माना टीम, थॉट्स इमोशंस एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज, मन के चार एस्पेक्ट हैं, संकल्प भावना वृत्ति और स्मृति। संकल्प और भावना में क्या फर्क है, जैसे कहते हैं मन सोचने की शक्ति है, सचमुच मन की सोचने की शक्ति है, किंतु उन सोचने की शक्ति को अगर हम इंटेंस कर दें, उसी विचार में गहराई से चले जाएं, तो वो भावना बन जाती है। तो विचार और भावना में क्या फर्क है, व्हेन थॉट्स बिकम इंटेंस, वो वाला विचार अगर इंटेंस हो जाए, गहराई में चले जाओ उस विचार को, बहुत गहराई से अनुभव करो तो भावना बन गई। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आया, आपसे बातें करता है, ओम शांति करता है, फिर आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, फिर और अच्छी बातें करता है ना, है ना, ज्ञान के बारे में, उनको ज्ञान नहीं है, ज्ञान या ज्ञानी है किंतु आपसे बहुत ज्ञान की बात कर रहा है, तो आपके मन में क्या हुआ, क्या भावना बैठ गई, ये व्यक्ति बाबा का बहुत अच्छा बच्चा है, है ना। खाली एक बार बोलता ओम शांति तो आपको नहीं, वो एक विचार दिया किंतु उसमें थोड़ी सी इंटेंसली उसी बारे बात ओम शांति के बारे बात कर रहा है तो भावना हो गई ना, तो आपके मन में भावना बैठ गई। दो एक बार मिला आपको खाली ओम शांति की, अगली बार मिला थोड़ा और आपसे कुछ और बात की, और कुछ दिया, कुछ चीज आपको दी, फिर अगली बार मिला और कुछ बात, तो तीन चार बार मिला तो क्या हुआ, विचार चले उसी के बारे में, भावना बैठ गई कि ये आदमी बहुत अच्छा है। एक आदमी आया, उसने कोई गलत, पहले गलत बोला, गलत बिहेव किया, फिर अगली बार फिर गलत किया, तीसरी बार अलग, फिर चौथी बार फिर अलग, क्या हुआ, कैसी भावना बन गई आपकी, अशुभ भावना बन गई। तो इंटेंस थॉट्स ऐसे ही बाबा की, जब हम जब बार बार मां के अनुभव को हम याद करते हैं, शिव बाबा मुझे ब्रह्मा के द्वारा क्या कर रहे हैं, पालना दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, और दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया है, बाबा मुझे जन्म दिया है, शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा दिया, और ब्रह्मा बाबा के जैसे एक एक उसकी हमें संबंध की अनुभूति कैसे करनी है, शिव बाबा जैसे ब्रह्मा के द्वारा जन्म देते हैं तो हमको जन्म देते ही एक दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट में दे देते हैं, जन्मदिन की गिफ्ट देते हैं ना जैसे, तो शिव बाबा हमको क्या जन्म क्या गिफ्ट दे देते हैं, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट किसमें देते हैं, गिफ्ट के रूप में, क्या गिफ्ट दे, कैसे क्या वो लिफ्ट क्या करती है, जैसे मान लीजिए अगर आप यहां से उसमें जाएं बस ट्रेन में जाएं तो ट्रेन आपके घर जाएगी क्या, ट्रेन आपके घर नहीं जाएगी, कार में जाएंगे तो भी कार तो कहां तक छोड़ेगी, है? कार भी गेट तक छोड़ेगी ना, किंतु वो ये लिफ्ट ऐसे ही सीधी बाबा की गोद में उतारती है, क्या उतारती है, बाप दादा की गोद में उतारती है, सीधा गोद में, मतलब यहाँ से गए, अगर मान लीजिए आपको कोई सैटेलाइट कोई क्या बोलते हैं उसको रॉकेट होता है, रॉकेट में मान लीजिए कोई रॉकेट कहीं चंद्रमा से आए और कोई उसमें आए नीचे, उसने उतार दिया हमको अमेरिका में, आना था यहाँ पर माउंट आबू, तो फिर अमेरिका से आने के लिए माउंट आबू टाइम लगेगा नहीं लगेगा? 24 घंटे फिर प्लेन लेंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर दिल्ली अहमदाबाद, फिर अहमदाबाद से आएंगे, किंतु कोई हमको यहीं सीधे इसी कमरे में मेडिटेशन हॉल में उतार दे तो नहीं ऐसा? तो ये है लिफ्ट, मतलब ऐसी लिफ्ट है बाबा देता है हमको पैदा करते ही, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट देता है, किसमें गिफ्ट में दे देता है, जो हमको एक सेकंड से भी कम समय में कहां पहुंचा देती है, सूक्ष्म वतन में जो बाप दादा बैठे हैं ना, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का माइंड फॉर्म में बैठे हैं, उनकी गोद में पहुंचा देती है। ठीक है, कि जब चाहो जहां चाहो कुछ भी कर रहे हो वो दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट में बैठो और मेरे पास पहुंच जाओ। दिव्य बुद्धि किसे कहते हैं? दिव्य बुद्धि किसे कहते हैं? वो लिफ्ट क्या है? लिफ्ट है, डरो नहीं, बताओ ना, आप सबको पता है लिफ्ट, बुद्धि बुद्धि, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट क्या है? दिव्य बुद्धि माना जिस बुद्धि में ज्ञान भरा हो। पैदा करते ही बाबा हमको क्या कहते थे? ज्ञान देते हैं ना। पहले बुद्धि थी, पहले बुद्धि हमारी कैसी थी? अज्ञानी बुद्धि थी ना। अभी बुद्धि में ज्ञान भर दिया, क्या भर दिया? एबीसीडी भर दिया। सार रूप में ज्ञान क्या? एबीसीडी, आत्मा बच्चे तुम आत्मा हो, तुम मेरी संतान हो, तुम्हारे सी माना कनेक्शन, तुम्हारे सर्व संबंध मेरे साथ हैं। और डी फॉर ड्रामा, बच्चे तुम्हारे साथ जो तुम्हारा पति पत्नी बच्चे माँ बाप भाई बहन दोस्त बिजनेस ये सब क्या चीज है, तुम्हारा प्रोफेशन ये क्या है, तुम्हारा पिछले जन्मों का और इस जन्म का हिसाब किताब है। कोई तुम्हारा तुम्हें अपना बन के दुख दे रहा है, सुख दे रहा है, गाली दे रहा है, धोखा दे रहा है, जो भी कर रहा है, जो भी हुआ है अभी तक वो अच्छा हुआ है, तुमने जो किया था तुमको वैसा मिला है। और अभी क्या हो रहा है? अभी जो हो रहा है, अभी जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? वो तो अच्छा हुआ, किंतु अभी अभी क्या हो रहा है? जो हुआ अच्छा, अब बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि अब समझ आ गई, पहले समझ नहीं थी। पहले हम सोचते थे मेरे को ही सारे दुख मिलने हैं क्या, बचपन से इसने दुख दिया, उसने दुख दिया, इसने ऐसा दिया, इसने वैसा दिया, अभी भी दुख दे रहे हैं। अभी आज सारी दुनिया कहां फंसी है? सारी दुनिया में दुख किस बात का है? 90% विचार कहां से आ रहे हैं आदमी को? आज 90% विचार आ रहे हैं पास से, मेरे साथ इसने ऐसा किया, बचपन में ऐसा था, ऐसे ऐसे हुआ, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने धोखा दिया, इसने ऐसा किया, बिजनेस में ऐसा ऊपर नीचे हो गया मेरे साथ। तो सब कोई भी ऐसा आप में से कोई ऐसा है क्या जो कहे बचपन से लेकर आज तक मेरा सब कुछ बहुत अच्छा बीता है? बताओ, कोई भी हाथ उठाओ, उसको 1,00,000 रुपए इनाम। बोलो बोलो, 100% परफेक्ट बीता है, मेरी इच्छा के अनुसार बीता है। बहुत अमीर घर वालों को मैं खुली छुट्टी है बोलने की। बोलो, जिनके पास बहुत पैसा है, 10 करोड़ रुपए से ऊपर ज्यादा है, ऐसा कोई है क्या? मैंने एक बार अनिल अंबानी से पूछा था, मैंने कहा अनिल अंबानी आप बताओ, एक बार मिले थे मुझे, तो मैंने कहा आपको तो बचपन से बहुत सुख मिला होगा ना, आप तो बहुत सुखी है ना? कहते नहीं डॉक्टर साहब, मैं सुखी नहीं हूं, मैं तो बहुत दुखी हूं, मेरा पास बहुत खराब बीता है ना। भारत का सबसे मतलब मुकेश अंबानी अनिल में सबसे रिच व्यक्ति है ना, तो उसका भी हाल है। मैं अब्दुल कलाम साहब से पूछा था मैंने, अब्दुल कलाम तो हमारे पास बहुत आते थे ना, हार्ट के प्रोजेक्ट में साथ में काम किया, तो मैंने उनसे पूछा सर आप कैसे मतलब क्या फील करते हैं, आज तक का जीवन कैसा रहा आपका? कहते बचपन से बहुत दुख देखे, बहुत दुख देखे, हर लेवल पे दुख देखे, बहुत दुखी मैं, इसलिए कभी पास को याद नहीं करता। क्या जो कहा जो हुआ अच्छा हुआ, उनको ज्ञान नहीं था, उनको सिर्फ ने कहा मैं कभी पास को याद नहीं करता, कभी होता तो उसको बंद कर देता, उसको फिर याद करता हूं, दुख आता है बहुत सर। तो हम क्या करते हैं? हमें बाबा ने कहा बच्चे जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारे साथ तक चुप्त हो गए, और जो हो रहा है ये बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं अभी, और जो होने वाला है क्योंकि तुम अब अच्छे कर्म कर रहे हो तो अच्छे से अच्छे, हर कर्म का अच्छा फल, अच्छे कर्म का अच्छा फल होगा ये, और पता है हम सत्युग में जाएंगे, हीरे जवाहरात के महल में होंगे, एक एक हीरा इतना कीमती होगा जैसे पूरा उससे अमेरिका खरीद सकते हो, नहीं पद्मों का होगा हीरा। आज पता है जितना भी जो इस समय सबसे अमीर व्यक्ति है ना, उसके पास आधा शंख रुपया है, आधा शंख मनी है। आधा शंख पता किसे कहते हैं? नहीं पता। अरब के बाद खरब, 100 अरब का एक खरब होता है, 100 करोड़ का एक अरब होता है, और 100 अरब का एक खरब होता है, फिर 100 शंख का, 100 खरब का एक शंख होता है, और फिर 100 शंख का एक पदम होता है, है ना? ठीक है। तो सबसे रिच व्यक्ति क्या कितना है वो, उसके पास आधा शंख से भी कम है। और हम क्या होते हैं? सत्युग का गरीब से गरीब आदमी क्या होता है? पद्मा पद्मपति होता है ना, हमारे हर कदम में पद्म होता है ना। और वहां पे मतलब हमारा एक हीरा भी कैसा होगा, एक वो पद्म पद्म का पद्म, आज के पद्म, मतलब पूरी प्रॉपर्टी हम अमेरिका खरीद लें, पूरा अमेरिका ही खरीद लें, एक एक आदमी गरीब आदमी खरीद लें, तो कैसे हम होंगे सोचो जरा। अभी ध्यान पर रखना, पदम का आपको पता नहीं था ना, अभी पदम का पता लग गया ना तो काउंट करो तो पदम क्या होता है ना। नहीं तो कई बार पदम ऐसे सोच लेते, पदम पदम एक हर कदम में पदम, माना एक कमल का फूल होता है शायद ना, कमल का फूल नहीं है, कितना होता है पदम पता था आपको? तो 100 खरब का एक शंख और फिर 100 शंख का एक पदम, ये हिंदी में जो है ना, जो गिनती होती है उसमें आता है ना। तो समझे आप, तो ये जो ABCD, ये जिसकी बुद्धि में उसकी दिव्य बुद्धि है, जस्ट ABCD किया सूक्ष्म तन में पहुंच गया। पर चलते फिरते अभ्यास होना चाहिए ABCD का, और सूक्ष्म तन में पहुंच गए तो बाप दादा की गोद में पहुंच गए, ठीक है। तो ये अनुभव जितना इंटेंस करते जाओ ना, जितना इंटेंस, तो ये भावना बदल जाएगी, भावना बन जाएगी, ठीक है। भावना बन जाएगी तो क्या होगा, भावना को लंबा समय चालू रखो, प्रोलॉन्ग कर दो भावना को, इमोशन को, तो वो वृत्ति बन जाती है, हमारा एटीट्यूड बन जाता है। एटीट्यूड माना हमारी वृत्ति में, हमारे दृष्टिकोण में क्या आ जाएगा, बाबा हमको दिखाई देगा, हरेक के मस्तक से बाबा दिखाई देगा, ये बाबा का बच्चा, ये बाबा का बच्चा, ये बाबा का बच्चा, ये बाबा ही दिखाई देगा चारों तरफ, बाबा ही, आज की बोली ना, बाबा ही बाबा दिखाई देगा। तो हमारा एटीट्यूड वृत्ति हमारी ये हो जाएगी। तो जब वृत्ति हो जाती है फिर कर्म होने लगते हैं, वृत्ति के बाद कर्म होने लगते हैं, वृत्ति से पहले हम कर्म नहीं करते। भावना में आने वाला कर्म करता है वो पागल कहलाता है, दुनिया में भी हम कहते हैं ये भावना में आके कर्म करता है, बेवकूफ है शायद, धोखा खाता है फिर। तो भावना पे कर्म नहीं होते, वृत्ति एटीट्यूड बदलने के बाद कर्म में आते हैं। और जब हम उससे, जो हम एक बार कर्म करते हैं उससे इंप्रेशन बनता है, और अगर वही इंप्रेशन, उसे उस इंप्रेशन कई लोग रीइन्फोर्स कर दें, कई लोग कह दें, तो उसे क्या कहते हैं, उसे बिलीफ सिस्टम कहते हैं। बिलीफ सिस्टम समझते हैं, बिल्ली ने रास्ता काटा काम खराब होएगा, है ना, बिल्ली रास्ता काटी, बिल्ली मेरे रास्ते से, मैं काम पे जा रहा था, रास्ता काट के चले गए और मेरा काम नहीं हुआ उस दिन, तो मैंने ऐसे ही फिर कहा, और माने भी देखा था या किसी ने देखा था मेरे साथ ही, उसने मना किया, नहीं आप नहीं जाओ, मैंने कहा नहीं नहीं मैं तो जाऊंगा, बिल्ली के रास्ते से क्या होता है, कुछ नहीं होता। फिर वो आके क्या बोलेगा, मैंने कहा था ना बिल्ली के रास्ता काटने से काम खराब होगा, तुम्हारा काम तुम्हारा होगा ही नहीं, तुम थोड़ी देर बैठ जाते ना तो काम हो जाता था। तो क्या हुआ, उसने रीइन्फोर्स कर दिया, फिर कुछ हाँ इसने, फिर तीसरे व्यक्ति ने भी रीइन्फोर्स कर दिया, चौथे व्यक्ति ने रीइन्फोर्स कर दिया, मतलब कई लोगों ने बोल दिया, तो क्या हो गया, बिलीफ सिस्टम बन गया। अब जब जब रास्ता बिल्ली काटेगी तब तक क्या फीलिंग आएगी मेरे को, मेरा काम खराब होएगा, समझ में आई बात आपको? तो ये बिलीफ सिस्टम हो गया। अभी हमारे सारे फिजिकल बिलीफ सिस्टम्स बने हुए हैं, हमारे फिजिकल इंप्रेशंस हैं, फिजिकल समझते हैं, दुनियावी। अभी हमको क्या बनाने, स्पिरिचुअल इंप्रेशंस बनाने, हम जो भी कर्म कर, अब उस वृत्ति से बाबा मेरे साथ है, ये वृत्ति बन गई ना मेरी, हम सब बाबा के बच्चे हैं, ये एटीट्यूड बन गया, और ये आत्मिक वृत्ति, मतलब रूहानी वृत्ति बन गई मेरी, आत्मिक वृत्ति पर सबको आत्मा देखता हूं। और जब ऐसी वृत्ति बन जाएगी तो फिर मेरे से कर्म कैसे होंगे, जो कर्म होंगे ना वो फिर मेरे उससे इंप्रेशन जो बनेंगे ना, इंप्रेशन ना शॉर्ट टर्म मेमोरी, वो मेरे कैसे कर्म बन गए, अब वो कर्म मेरे बन गए कि बाबा शिव बाबा, मैं बाबा की गोद में हूं सूक्ष्म वतन में, यह मेरा इंप्रेशन बन गया और यह बिलीफ सिस्टम बन गया कि बाबा हर बात की मुझे डायरेक्शन देता है, बाबा से हर बात पूछ लेता हूं, बाबा ये ऐसे कह रहे हैं मैं करूं कि नहीं करूं, तो ऐसा बाबा से जवाब आता है हां बच्चे कर लो, बच्चे इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो ये मेरा क्या बनता जा रहा है, ये बिलीफ सिस्टम बन गया, बाबा की डायरेक्शन पे मैं चल रहा हूं अंदर अंदर, दूसरों को नहीं कहता हूं कि तुम्हें अंदर से मुझे फील होता बाबा ने मुझे टचिंग कर दी, और फिर मैं बार बार ऐसे करता हूं तो मेरे संस्कार बन गए, मतलब मेमोरी रिकॉर्ड हो गई लंबा समय की, लॉन्ग टर्म मेमोरी रिकॉर्ड हो गई, तो नए संस्कार बन गए। अब मुझे सारा टाइम क्या होता है, मैं बाबा की गोद में हूं, मैं मां शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की तरह मुझे अपनी गोद में पालना और प्यार दे रहे हैं, ये बन गया मेरा स्पिरिचुअल संस्कार, ब्राह्मण संस्कार बन गया, ठीक है ना, चलते फिरते उठते बैठते ब्राह्मण संस्कार बन गया, समझ रहे। अभी मुझे मनुष्य से कौन सा संस्कार बनाना है, ब्राह्मण के संस्कार बनाने, तो ये ब्राह्मण के, ब्राह्मण माना क्या, ब्राह्मण ब्रह्म माना बेहद मन, जिसका मन बेहद में रहे सदा, जिसकी मन और बुद्धि बेहद में रहे उसे कहते हैं ब्राह्मण। हद मनुष्य की बुद्धि कहां रहती है, हद में रहती है, मनुष्य माना मन के वश में, उसकी बुद्धि कहां रहती है, दे के संबंध, दे के स्वभाव संस्कार, दे के पदार्थों में रहती है, ये हद है। बेहद क्या है, आत्मा है बेहद, एक सेकंड में अभी यहां, एक सेकंड में वहां, परमात्मा बेहद है, बाबा से सर्व संबंध मेरे बेहद है, और डी फॉर ड्रामा, ड्रामा बेहद है, तो एबीसीडी बेहद है, ये ज्ञान बेहद है, उसमें बुद्धि रहती है तो मैं ब्राह्मण हूं, राइट। नहीं तो थोड़ी देह का भान आता है, देह के संबंध याद आते हैं, मैं कौन हूं, मनुष्य हूं, राइट। तो ब्राह्मणों के संस्कार बनते जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फिर चलते फिरते क्या हुआ, मां के संबंध की अनुभूति हो गई। अब बाबा सदा क्या फील हो, छत्र छाया का मतलब क्या है, छत्र छाया का मतलब है कि बाबा की छत्र छाया में हूं, मतलब बाबा सदा मेरे साथ है ना। तो जो बाप के साथ मां के अनुभव की बात मैंने बताई ना, तो शिव बाबा के साथ मां के अनुभव की बात, ऐसे उसको विचार को, इस विचार को इंटेंसली करोगे गहराई से तो क्या बन जाए, भावना बनेगी, लंबा समय करते रहोगे तो क्या बन जाएगी, वृत्ति बन जाएगी, वृत्ति बनेगी तो फिर नए इंप्रेशन बनेंगे, बिलीफ सिस्टम नए बनेंगे, और फिर संस्कार बन गए, नए संस्कार। ऐसे बाप के रूप में बाबा क्या करता है, अब आप बाप की गोद में जाके बैठ गए सूक्ष्म वतन। अच्छा सूक्ष्म वतन क्या है, कोई बताएगा, टाइम तो वैसे मेरा टाइम मेरे ज्यादा नहीं है, पर सूक्ष्म वतन क्या है बताओ, कौन बताएगा। अच्छा देखो, बाबा ने एक बार कहा था, कृतिबेन आपको याद होगा, सूक्ष्म वतन का अनुभव करने के लिए बाप के साथ सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद चाहिए, याद है ये लाइन, ऐसे बिल्कुल ऐसे थी, मैंने इसमें कुछ शब्द ऐड नहीं किया। सूक्ष्म वतन की अनुभूति करने के लिए, सूक्ष्म वतन के अनुभव लेने के, अनुभव करने के लिए क्या करना है, हमें बाप के साथ सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद चाहिए। एक संबंध नहीं, खाली मां का संबंध नहीं, बाप का भी संबंध, टीचर का भी संबंध, बंधु का भी संबंध, सखा का भी संबंध, साजन का भी संबंध, सर्जन का भी संबंध, और बच्चे का भी, नौ संबंध मुख्य है बाप के साथ हमारे। एक एक संबंध की बहुत गहराई से याद चाहिए, मतलब अनुभव, उसका भी सार चाहिए, इसेंस चाहिए, खाली नहीं मां के याद में बैठा रहा, नहीं, फिर उसका भी इसेंस, मां के सार का इसेंस क्या है, मां के संबंध का इसेंस क्या है, सार क्या है, विस्तार तो बहुत बड़ा है, सार क्या है, बाप के संबंध का सार क्या है। तो मां के संबंध का बताया दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट है ना, लिफ्ट कितनी देर में पहुंचती है, एक सेकंड से भी कम समय में सूक्ष्म वतन बाप दादा की गोद में पहुंच गए। अब दादा बाप दादा की गोद में आप पहुंच गए, सूक्ष्म वतन क्या है, पहले मैं वो बात पूरी करना भूल गया, सूक्ष्म वतन क्या है कौन बताएगा, चलो फिर 1,00,000 रुपया इनाम, चलो जो बताए बोलो, हाँ जी सूक्ष्म वतन जो है, सूक्ष्म माना क्या, पवित्र, सूक्ष्म माना आंखों से दिखाई ना देने वाला और शुद्ध पवित्र है ना। फरिश्ता क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म, जो आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं ना, मन बुद्धि संस्कार, ये सूक्ष्म है ना, तो ये यही सूक्ष्म शरीर है। एक तो बॉडी फिजिकल, ये स्थूल शरीर है, ये आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियों से मिलके ही सूक्ष्म शरीर बनता है। मन बुद्धि संस्कार से सूक्ष्म शरीर बनता है। जब ये 100% पवित्र है, शुद्ध है, तो हमारा शरीर कैसा बन गया? सूक्ष्म शरीर कैसा बन गया? फरिश्ता। जिस बुद्धि में सिर्फ बाप के सिवा कोई ना समाया हो, बाप से सिर्फ संबंधों की सार वाली याद हो, जिस दिल में, जिस मन, दिल बुद्धि में और मन में माना स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प में सिर्फ बाबा हो, और संस्कार कैसे हो? ब्राह्मण से फरिश्ता के संस्कार बन गए। मतलब जिसकी मन बुद्धि संस्कार तीनों पवित्र बन गए 100%, वो क्या है? फरिश्ता, राइट। मतलब 100% पॉजिटिव टीम। बुद्धि में तो बाबा आ गया, ABCD आ गया, अब किस परिवर्तन किसको करना है? मन को परिवर्तन करना है। इसलिए मनमना भव है। मनमना भव माना बुद्धि में तो ज्ञान आ गया, अब उस बुद्धि, दिव्य बुद्धि को यूज करके अपनी स्मृतियों को परिवर्तन करो, उसके आधार पर संकल्प करो, उस संकल्प को फिर और गहराई में जाओ तो भावना बनेगी, भावना में बाबा आ जाएगा, फिर भावना में बाबा आए उसको लंबा समय करते रहो तो फिर हमारे वृत्ति में बाबा आ जाएगा, हमारी वृत्ति बाबा जैसी बन जाएगी, रूहानी वृत्ति बन जाएगी, और जब उसके साथ उस याद में कर्म करेंगे तो हमारे इंप्रेशंस, बिलीफ सिस्टम्स और संस्कार कैसे हो जाएंगे? बाप समान हो जाएंगे। तो ये मनमना भव है, ठीक है। तो ये मनमना भव, तो ये मन मन ठीक हो गया तो फरिश्ता बन गए, राइट। तो ये जो है, मैं जब ये, तो जैसे अब मैं आपको बता, शिव बाबा जब आए थे ब्रह्मा, जब शिव बाबा संगम शुरू हुआ 36 में, पहले बाबा ने क्या किया? अपना परिचय दिया, निज स्वरूपम है ना, आनंद स्वरूपम शिवम शिवम, ज्ञान स्वरूपम शिवम। तो बाबा ने अपना परिचय दिया, तो और फिर बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा तत्वम, फिर उनको विनाश दिखाया, फिर सत्युग दिखाया, स्वर्ग दिखाया, फिर बताया तुम्हें बनाना है। तो बाबा ने आते ही ब्रह्मा बाबा का बुद्धि में ज्ञान डाल दिया, और आते ही उसके मन को लक्ष्य दे दिया, बुद्धि को बुद्धि में ज्ञान डाल दिया, आत्मा का परमात्मा का संबंध का और ड्रामा का, और लक्ष्य दे दिया तुम्हें यह बनना है, नारायण बनना है, विष्णु बनना है, और तुम्हें ये नई दुनिया बनानी है। मन बिजी हो गया उसमें, तो फिर शिव बाबा सिर्फ संस्कार परिवर्तन करने थे, उस 33 साल में संस्कार परिवर्तन कर लिया। तो शिव बाबा ने पहले क्या सूक्ष्म वतन बनाया, सूक्ष्म वतन माना बाबा का दिल, ठीक है। बाबा के पास मन है क्या? शिव बाबा के पास मन है क्या? संस्कार है क्या बाबा के पास? शिव बाबा का संस्कार है क्या? शिव बाबा का एक ही संस्कार है, विश्व कल्याणकारी, ठीक है, रहम दिल, और कुछ संस्कार नहीं बाबा के पास। ऐसे मन भी बाबा को संकल्प चलाने पड़ते हैं क्या? अभी बच्चे परेशान और नीचे जाऊं, ऐसे बाबा सोचता है क्या? जब समय अब बच्चे, ये एक्सीडेंट हो जाएगा बच्चे का, अरे रुक जा, है ना, ऐसे करता है ना, नहीं करता ना, कुछ संकल्प नहीं चलता, समय पर अपने आप आ जाता है, समय पर जितना ज्ञान सुनाना उतना सुना के चला जाता है। बच्चे नीचे गाना गाते रहे बाबा भी नहीं जाओ छोड़कर, तो बाबा क्या करता है? बहन क्या करता है? नहीं, रुक जाता है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, बच्चे कह रहे हैं आधी दो घंटे और रुक जाता है, नहीं करता ना। तो बाबा का तो फिक्स टाइम है, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं करता है। तो बाबा को मन और बुद्धि है बाबा के पास, बुद्धिमानों की बुद्धि है, दिल है। तो सूक्ष्म वतन कुछ और नहीं, बाबा का दिल है, और जैसे ही बाबा, ब्रह्मा बाबा उसके दिल में जाके बैठ जाते हैं, ब्रह्मा की बुद्धि मन और संस्कार पवित्र हुए, ब्रह्मा बाबा वहां जाके बैठ गए। अब ब्रह्मा बाबा के दिल में क्या है? ब्रह्मा बाबा का दिल पवित्र हो गया, बुद्धि पवित्र हो गई, तो उसमें शिव बाबा आके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म वतन क्या हुआ? ब्रह्मा, शिव बाबा का दिल, और उसमें कौन बैठा है? ब्रह्मा बाबा, और ब्रह्मा बाबा के दिल में कौन बैठा है? शिव बाबा। तो इसलिए कहते हैं, आज बाबा कहते हैं ना, मुरली में आते हैं, बाबा के दिल में कौन? मेरा बच्चे, मेरे बच्चे, और बाबा बच्चों के दिल में कौन? मेरा बाबा। तो पहला बच्चा कौन? ब्रह्मा बाबा। तो शिव बाबा के दिल में कौन? ब्रह्मा बाबा। और ब्रह्मा बाबा के दिल में कौन? शिव बाबा। तो ये पहली एग्जाम्पल है, बाबा के दिल में कौन? ब्रह्मा बाबा। और ब्रह्मा बाबा के दिल में कौन? शिव बाबा। तो ये बाप दादा है, ठीक है, वहां बैठे। तो अब सूक्ष्म वतन में कौन जा सकता है? जो शिव बाबा के दिल में दिल तक नशीन बने। दिल तक नशीन कौन बनेगा? जो बाबा की हर श्रीमत पे चलेगा, ठीक है। तो सूक्ष्म वतन कुछ और नहीं है, क्या है बाबा का? दिल, किसका दिल? शिव बाबा का दिल। और ब्रह्मा बाबा के दिल में हमको जाना, ब्रह्मा बाबा की गोद में, बाप दादा की गोद में, तो क्या करना पड़ेगा? सर्व संबंधों के सार वाली याद चाहिए। ब्रह्मा बाबा के थ्रू ही बाप की हम, अब जब बाबा की गोद में जाके बैठ गए ना, तो ब्रह्मा बाबा के थ्रू दिखाता है बाबा, हमें तीसरा नेत्र देता है। बाप के रूप में शिव बाबा ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है कि बच्चे देखो, देखो तुम ये हो, हाथ लगा के बताता है, बच्चे तुम ये आत्मा हो, यहां बैठे हो आत्मा, दिखाता माना, बिंदु दिखाता है क्या? नहीं बच्चे, तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो। बच्चे देखो ये ना, मैं बैठा हूं यहां पर, मैं ब्रह्मा, मैं शिव बाबा बैठा हूं, मैं शिव बैठा हूं, ये ब्रह्मा है, ये ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर, ये सूक्ष्म वतन है, ये तुम्हारा नीचे स्थूल वतन है, ऊपर परमधाम। परमधाम क्या है? सुखधाम क्या है? और कर्मों की गुह्य गति क्या है? ये ज्ञान के तीसरे नेत्र से हम देख सकते हैं, देख सकते हैं मतलब जान सकते हैं। ऐसे दिखाई नहीं देती कर्मों की गुह्य गति, है ना? सूक्ष्म वतन दिखाई नहीं देता, परमधाम भी दिखाई नहीं देता है, लाल लाल नहीं दिखाई देता है कि वहां लाल लाल रंग का सुरैनी प्रकाश हो रहा है, नहीं। ये बाबा समझाता है सूक्ष्म वतन परमधाम क्या है, ये आत्माओं की दुनिया है, ये संकल्पों से परे की दुनिया है, समझाता है वहां बैठा के, बाप के रूप में गोदी में बिठा के, किसी गोदी में, बाप दादा अपनी गोदी में बिठा के समझाते हैं, ठीक है। जब बाबा की गोद में पहुंच गए, फिर बाबा सतगुरु के रूप, टीचर के रूप में क्या करता है? त्रिकालदर्शी बनाता है। बाप के रूप में त्रिनेत्री, टीचर के रूप में त्रिकालदर्शी, मतलब तीनों कालों का ज्ञान देता है, मतलब सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान देता है, राइट? मतलब बाप के रूप में रचता के तीनों का, रचता के, रचता का ज्ञान देता है तीनों कालों का, और रचना का क्या मतलब स्वदर्शन चक्रधारी बना देता है। टीचर के रूप में स्वदर्शन चक्रधारी, अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, मध्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, फिर वापस अनादि, पांच रूप की दिल सिखा देता है। और फिर सतगुरु क्रम में त्रिलोकीनाथ बना देता है। त्रिलोकीनाथ माना तीनों लोकों का ज्ञान दे देता है ना, मतलब हमको मल्टीपल एंट्री वीजा दे देता है, जब चाहे सूक्ष्म वतन में जाओ, जब चाहे परमधाम में आओ, जितनी बार आओ जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक, कोई पूछेगा नहीं आपको। सतगुरु मतलब हमारे विक्रम विनाश करता है, हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देता है, मतलब हमें मुक्त बना देता है देह के बंधन से। हमारे जो विक्रम है ना, हमसे विक्रम होने बंद हो जाते हैं और फिर हम ऊपर नीचे आना जाना शुरू करते हैं। और बंधु के रूप में क्या करता है? बड़ा भाई क्या करता है छोटे भाई को? छोटा सा भाई है, सामान उठा के चल रहा है, क्या करेगा बड़ा भाई? क्या करेगा? मैं उठा दे, तुम खाली हाथ चलो। तो बड़े भाई के रूप में कहता है कि तुम सारा बोझ मेरे को दे दो, तुम्हारा लौकिक अलौकिक जो भी बोझ है मुझे दे दो, ठीक है, सारा बोझ हर लेता है। और सखा के रूप में क्या करता है? ये सब अनुभव करने की बात है ना, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है, आपके टाइम पूरा हो गया है, कृति बहन सोच रही होगी मैं ना टाइम एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, तो सुना आपने। तो सखा के रूप में क्या करता है? जो बातें हम अपने माँ बाप को नहीं बताते हम, पति पत्नी को नहीं बताते, किसको बताते हैं? दोस्त को बता देते हैं ना। तो बाबा के रूप जो भी हमसे गलतियां हो जाती, जाने अनजाने कुछ भी हमसे हो जाता है, कुछ बातें होती किसी को कह नहीं सकते, हम सखा के रूप में बाबा को हर बात शेयर कर लेते, हर बात उनको कह देते हैं, बाबा मुझसे गलती हो गई, बाबा मुझसे ऐसा हो गया, बाबा मुझसे ऐसा, बाबा मेरे से ऐसा हुआ, बाबा ज्ञान में आने से पहले ऐसा ऐसा मैंने पाप किए हैं, बाबा ज्ञान में आने के बाद भी मुझसे ये पाप हुआ है, मैं आज मैंने ये गलती की, उसने गुस्सा किया, मैंने भी उसको आंख दिखा दी, मैंने भी गुस्सा कर दिया, मेरे से सहन नहीं हुआ। तो बाबा से जो भी बातें हम सखा के रूप में शेयर कर लेते हैं, ठीक है। साजन के रूप में क्या करते हैं? साजन के रूप में क्या करते? साजन का क्या फर्ज होता है बताओ? साजन क्या करता है दुनिया में भी, क्या करता है बोलो? साजन का काम उससे निकालो ना, सजाता है हमको किसी से, वो तो गहने ला देगा, ड्रेस ला देगा, है ना, साड़ी ला देगा, कुछ ना कुछ लाएगा, कि तो ये क्या करता है? दैवी गुणों से जाता है हमको। कौन से गुणों से जाता है? दैवी गुणों से, स्वच्छता, सत्यता, ये दैवी गुण है, सत्यता, पवित्रता, निर्भयता। निर्भयता का क्या मतलब है कौन बताएगा? निर्भयता कौन बताएगा? बाबा की मुरलियों में सब बात 74, 75, 76 की वाणियों में सत्यता की डेफिनेशन, निर्भयता की डेफिनेशन, है ना, पवित्रता की डेफिनेशन सब बहुत अच्छी दी हुई है, पढ़ना है ना। अवैक्त मुरली पढ़ते हो सभी रोज? सारी मुरलियां पढ़ी 69 से लेकर अभी तक की? पढ़ी नहीं? पढ़ी, हमारा कोर्स है ये, सारी मुरली हमें एक बार बुद्धि से निकलनी चाहिए ना, कि 76 की मुरली में क्या था, 78 में क्या था, 79 में क्या था, अब 81 चल रही है तो 81 की मुरली में क्या है, तो सारी किताबें पास होने के लिए सब किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। एग्जाम होगा ना, कौन सी मुरली से क्वेश्चन आएगा पता है क्या आपको? हमारा कोर्स है ना, किताबें पढ़नी चाहिए। तो मतलब उसमें सब दिया हुआ है। तो निर्भयता माना जिसकी जिसकी एक आंख में, जिसकी एक आंख में क्या हो, एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम, मतलब एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम। कौन सी आंख में शांति धाम, कौन सी आंख में सुख धाम, बताओ, बोलो। लेफ्ट आई में मुक्ति, राइट में जीवन मुक्ति, मतलब सुख धाम, ठीक बात है या उल्टा, बोलो 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 बोलो। महादेव नगर वाले तो बता सकते हैं, बोलो। बाबा क्या इस आंख से बात कर रहा है क्या, इस वाली आंख से, शरीर की आंखों से बात कर रहा है? नहीं, आत्मा की आंख कौन सी है? दो आंखें आत्मा के पास है, बुद्धि और मन, है ना? तो बुद्धि रूपी आंख में शांति धाम, बुद्धि रूपी आंख में शांति धाम। हमेशा बुद्धि कहां लगी रहे? शांति धाम में, बाप के साथ लगी रहे। और मन, मन रूपी आंख में सुख धाम, मन में लक्ष्य लगा रहे, है ना? जैसे मैंने पहले बताया ना, ब्रह्मा बाबा के तन में जब शिव बाबा आए तो आते क्या दिया, उनकी बुद्धि, उनकी बुद्धि को लगा दिया कहां पर? शांति धाम, जाना है वापस घर। और मन में क्या भर दिया? ये बनना है, लक्ष्य भर दिया, एम ऑब्जेक्ट भर दिया, ठीक है। तो जिसके मन में, जिसकी बुद्धि में शांति धाम है, जिसकी मन में सुख धाम है, उसको क्या होगा? उसको डर लगेगा दुनिया से? उसकी नाम बुद्धि यहां पर है ना, मन यहां पर है। डर किसको लगेगा? जिसकी बुद्धि और मन कहां होंगे? दुख धाम में होंगे, नहीं? तो निर्भयता, अच्छी वो तो खैर समझ गए बात। तो ये जो दैवी गुण है ना, बाबा सजा देता है इनसे, सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, अंतर्मुखता, अंतर्मुखी बना देता है। अंतर्मुखता माना एक सेकंड में देह से डिटैच, अशरीरी आत्मा, एकांतवासी, एक के अंत में खो जाओ, ज्ञान सागर के अंत में खो गए, पवित्रता के सागर खो अंत में खो गए, खोए रहे 10 मिनट, खो जाओ शांति के सागर, प्रेम के सागर के अंत में खोए रहो, आनंद के सागर के अंत में खो जाओ, शक्तियों के सागर के अंत में खो जाओ, फिर उसी में एकाग्र हो जाओ, फिर एकाग्रता, फिर एक नामी। दर्द दिल में हो रहा है, डॉक्टर याद आना चाहिए? नहीं, दिलाराम याद आना चाहिए, दिलाराम याद आना चाहिए। सिर दर्द हो रहा है, कौन याद आना चाहिए? मालिश करने के तेल लगा लूं, मालिश करवा लूं, मालिश करने वाले को याद नहीं, शिव बाबा याद आना चाहिए। सबसे बढ़िया चंपी कौन करता है? शिव बाबा। बड़ी दादी बोला करती थी, दादी प्रकाशमणि, दादी कहती, गुप्ता जी मैं जब ना, मैं दादी से रोज मिलने जाता था मुरली के बाद ना, शायरी कोई दिन होता होगा मैं नहीं जाऊं, तो दादी से रोज मतलब मेरे को जाना होता था दादी को देखने, 95 से है ना, तो तब से मैं जाता था। तो दादी कहती, गुप्ता जी ऐसे ना, मैं बाबा से ऐसे बात करती हूँ जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूं, मैं जब थक जाती हूँ ना, बाबा मेरी मालिश कर देता है, सबसे बढ़िया मालिश करता है। एक बार मुझे अनुभव है बाबा के साथ का, मैं कैट प्रोग्राम था, तो मैं सारी रात ना, पेशेंट आते ना, हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, कभी किसी कुछ हो रहा है, कभी किसी कुछ हो रहा है, कभी किसी कुछ हो रहा है, मैं 3 बजे तक पेशेंट देखने में लगा रहा, रात दिन में सारा दिन काम किया, रात में भी 3 बजे तक पेशेंट, कभी किसी को छाती में दर्द हो रहा है, कभी किसी कुछ हो रहा है, कभी साथ वाले को कुछ हो रहा है, साथ दिल वाले भी होते हैं, साथ वाले भी होते हैं, उनकी पत्नी या जो भी होते हैं, तो वो कभी किसको कुछ हो, कभी एक अपने कमरे में आओ फिर कॉल आ जाए, उसकी तकलीफ, उस कमरे में ये हो रहा है, उस कमरे में ये हो रहा है, उस कमरे में। तो मैं 3 बजे तक, जैसे मैं इतना थक गया उस दिन काम करते करते, एक मिनट भी सोया नहीं, तो मेरे को ऐसे लगा कि मैं ना अभी 3:30, फिर योग का गीत बज जाता है, उनको उठाना भी होता है, दूसरे लोग उठाते थे, किंतु मैं, मेरे को लगा मेरे को अभी योग के लिए जाना। मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत जोर से सिर में भी दर्द हो रहा था, बहुत भारी नींद, आंखें भारी हो रही थी। मैंने कहा, बाबा आज तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मैं तो अभी आधा घंटा तो अभी सोऊंगा, आधा घंटे में क्या सोऊंगा, कुछ भी नहीं होगा, और अभी थोड़ी देर में आपका वो गीत बज जाएगा। तो मैंने ऐसे बाबा से शिकायत की, वो लहना दिया, जैसे आज की सेकंड पेज पे था ना आज की मुरली में, है ना, तो मैंने कहा, बाबा अभी तो ऐसे सारा दिन एक मिनट भी नहीं सोया हूं, तो आज तो सारा काम ही नहीं होगा मेरे से कुछ भी। तो मेरे को याद आया कि बाबा आप, मेरे को दादी की बात याद है कि तो बाबा मेरी, जब मैं थक जाती हूं तो बाबा मेरी मालिश कर देता है, तो मैंने कहा, बाबा आप दादी की मालिश करते, मेरी नहीं कर सकते हो। तो मैं बेड पे ऐसे बैठा था, बेड के किनारे पे बैठा था, अभी लेटा नहीं था,
बेड के किनारे पे बैठा था। तो ऐसे ऐसे बैठे बैठे अचानक क्या हुआ कि जैसे किरने जैसे ना कुछ ऐसा हुआ कि अंदर कुछ होने लगा अपने आप ही। पहले सिर में कुछ हुआ, फिर यहां हुआ, अंदर 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 कंधों में हुआ, यहां हुआ, यहां हुआ। मैं समझता 30 सेकंड भी नहीं होंगे, सेकंड वो तो टाइम एंड स्पेस से परे होता है, उसमें समय का कैंसर कितने सेकंड हुए होंगे। उस इतनी सेकंड में बस समझो कुछ सेकंड में सारा शरीर फूल जैसा हो गया, फूल जैसा माना एकदम जैसे फ्रेश, अभी 8 घंटे से सो के उठा हूं। तो बाबा मतलब जो है कोई भी तकलीफ आपको कहीं भी शरीर में हो, मेरे को इतना अनुभव है मैं आपको बताऊं, मेरे हार्ट की तकलीफ, मेरे को हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी ना, मेरे हार्ट की तकलीफ खुद को है, हार्ट की दीवारें बहुत मोटी थी मेरी, और एक मिनट में 70 बार दर्द, 70 टाइम्स मुझे दर्द होता था 70 बार। कई लोगों को तो दर्द कभी कभी होता ना, मतलब एक दिन में 2 बार हो जाएगा, 3 बार, मेरे को तो हर धड़कन में दर्द था, मेरी हार्ट की पंपिंग बहुत ऐसे होती थी। तो मैं जब बाबा को याद करता तो दर्द खत्म। फिर मेरी अभी मैं आंख का ऑपरेशन हुआ, एक आंख में ट्यूमर हो गया था यहाँ पर इस आंख में इसके ऊपर, तो ट्यूमर हो गया तो उन्होंने नर्वी काट दी ऑपरेशन करने के टाइम, डॉक्टर ने कहा काट देता कि बार बार नहीं होगा। अब मेरा आधा सिर सुन हो गया, आधा सिर सुन हो गया, तो मेरा सिर सुन होने से क्या हो गया, अब मेरे को उसमें करंट लगते हैं, करंट लगते समझते हैं, एक बीमारी होती है ट्राइजेमिनल न्यूरलजिया, उसमें करंट लगते बड़े जोर से, चक्कू जैसे दर्द होता है जैसे काट रहा है कोई, तो वो दर्द, अब दर्द होता है आधे सिर में ना बहुत जोर से, जैसे ही मैं थोड़ा सा देहभान में आऊं ना दर्द शुरू हो जाता है। तो मुझे गिफ्ट मिली, 2 गिफ्ट मिली हुई है पता है भगवान से, कौन कौन सी, एक हार्ट की बीमारी और एक ये वाली बीमारी, जिससे नेचुरली मेरी याद रहती है, जैसे याद से बाहर आऊंगा दर्द शुरू हो जाएगा, इधर दर्द शुरू हो जाएगा, इधर दर्द शुरू हो जाएगा, फिर याद में जाऊंगा तो दर्द गायब हो जाएगा। तो ये मैंने इसलिए कहा, ये जो सर्जन है ना, सर्जन की याद, डॉक्टर लौकिक डॉक्टर की याद नहीं आए, बाबा सदा हमारे साथ है, ये अनुभव की छत्रछाया निरंतर होनी चाहिए। पर संकल्प करोगे ना, पहले संकल्प की भावना में बदलो कि बाबा मेरा सर्जन है, बाबा मेरा डॉक्टर है, बाबा मेरा साजन है ना, अंतर्मुखी एकांतवासी एकाग्रता एक नामी, हर बात में एक नामी, एक ही याद आए, दूसरा याद नहीं आना चाहिए। फिर व्यर्थ से इकोनॉमी, कोई व्यर्थ पाता है साइड में, ये मेरा काम नहीं है। फिर एक रस स्थिति, सरलता, सरल स्वभाव बना, नम्रता, उदारता, कोई गलती कर रहा है उसे गलती पर ध्यान नहीं जाना चाहिए, कुछ भी करे, पुराना हो नया हो, कोई भी हो, बीके नॉन बीके, कोई भी कुछ भी करे, उसका पार्ट वो जाने, मेरा पार्ट में जाना चाहिए, भले आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, आपके बच्चे हो, साक्षियों के पार्ट बजाओ, देखो मत। आज का प्रधान था ना साक्षी, है ना, तो वो जो है अटेंशन है। फिर उदारता, मधुरता, मीठा बोल, धैर्यता, कभी जल्दीबाजी मत करो, कुछ कर रहा है कोई कुछ भी तंग कर रहा हो आप पेशेंस रखो, कोई बात नहीं, मेरा हिसाब किताब, शायद मैंने तंग किया होगा, ये मेरे को तंग कर रहा है, मेरा हिसाब किताब छुट्टू हो रहा है। धैर्यता, प्रामाणिकता, गंभीरता, सीरियस होके जो काम करना सीरियस होकर करो, सीरियस माना रोने वाले मुंह बना के नहीं, बी मतलब हैव दैट थॉट कि मुझे करना है, और रमणीकता, सहनशीलता, दृढ़ता, करना ही है, और फिर संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, सम्मान लेके सबको सम्मान दो, निमित भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, आज्ञाकारी, वफादार, आज्ञाकारी माना बाबा की 2 आज्ञाएं हैं, सदा पवित्र भव, निरंतर योगी भव, ये बाबा की आज्ञा है, जो इस आज्ञा को फॉलो करेगा तो मेरे को आपे ही बाबा का वर्षा मिलेगा, बाबा की याद ऑटोमेटिक रहेगी, है ना। और वफादार माने मेरा तो शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और फिर ईमानदार मतलब मेरा हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म बाबा की श्रीमत पे चले, हर संबंध संपर्क भी बाबा की श्रीमत पे निभाऊं, ये ईमानदारी है। और फरमान बरदार क्या है, देह के सहसंबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थों को बुद्धि से भूल, त्यागो, फिर अपने को आत्मा समझ, फिर मां में कम याद करो, तब हम बाबा को याद में रह सकते हैं, तब सिर्फ बाबा याद आएगा, और जब बाबा याद आएगा तो हमारे विक्रम विनाश होंगे, और विक्रम विनाश होंगे तो फिर क्या होगा, फिर हम पावन सतो प्रधान बनेंगे, और जब पावन सतो प्रधान बनेंगे तो फिर बाप से मिलन मना सकेंगे, राइट। तो बाबा से मिलन मनाने के लिए ये जरूरी है, बाबा मेरे अंदर गंदगी भरी होगी तो बाबा से मेरा मिलन नहीं होता है, मैं बाबा को देखता रहता हूं, मिलन माना मैं बाबा की गोद में खो जाऊं, लवलीन हो जाऊं, बाबा से बात करूं, बाबा मुझसे बात करे, बाबा मुझे डायरेक्शन दे, सामने डायरेक्शन दे बाबा, जैसे बच्चे तुम ये करो, बच्चे तुम ये करो, बच्चे इस तरह से करो, बच्चे इस तरह से करो, राइट। तो एक एक संबंध की अनुभूति ऐसी होनी चाहिए। साजन के संबंध की मैंने बताई एक ना, ये जो संबंध की अनुभूति हुई, और फिर इसके बाद सर्जन की संबंध, सर्जन क्या करता है, आत्मा में पांच कीड़े लगे हुए हैं, कौन कौन से, दिल में ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और मन में कौन से कीड़े लगे हुए हैं, ये दस मैंने बताया ना, आलस्य, अलबेलापन, दूसरों में दोष निकालने की आदत, बदलने की भावना, संस्कार कहां होते, मन में होते हैं, और ये जो पांच विकार नेचर कहां होती, दिल में होती है ना। तो बाबा इसका ऑपरेशन करके निकालता रहता है, बार बार निकालता है, फिर हमारे अंदर घुस जाते हैं, अटेंशन जैसे ही भूलते हैं फिर घुस जाते हैं, है ना। तो हमें बार बार टेंशन, बाबा को दिल में बिठा दो तो फिर घुसेंगे नहीं, राइट। तो इसके लिए पक्का एक एक का अभ्यास करते जाओ, बच्चा फिर जो भी अपनी चीज है बाबा को दे दो, जो भी तन मन धन है सब, तन मन धन है ना, मन वाणी कर्म, और सेकंड हर समय समय संकल्प श्वास, ये सब बाबा के नाम कर दो, ठीक है। तो जब एक एक संबंध की ऐसी गहरी अनुभूति होगी तो बाबा छत्र छाया के रूप में सदा हमारे साथ रहेगा, और निरंतर फील होगा कि बाबा मेरे साथ है, मेरा बाबा मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो क्या करना है, क्या करना है, साधन क्या है, ABCD, साधन क्या है, ये ज्ञान, ये मुरली है ना, ये मुरली जो ना बाबा की जो मुरली है ना, ये मुरली कितने में कितनी बार पढ़नी चाहिए, ये मुरली आधार है, ABCD मुरली में क्या है, ABCD है ना, आत्मा बाबा कनेक्शन संबंध की सब बातें और ड्रामा की बातें, तो इसको ही मुझे कितनी बार, कम से 21 जन्म भागे चाहिए ना, कितनी बार पढ़नी चाहिए, 21 बार, तीन चार बार तो ऐसे पूरी पढ़ो, और फिर कम से कम हर आधे घंटे में निकाली, एक लाइन बाबा की देखी, उस पर मनन चिंतन मंथन किया, फिर जेब में रख दो। ये बाबा का लव लेटर भी है ना, लव लेटर कहां रखते हैं, दिल के पास ना, और लव लेटर हमेशा कभी ऐसे निकालते नहीं है, कभी आपने मैं देखा भी, एक्शन भी देखा होगा, कैसे निकालते हैं लव लेटर, पहले आसपास देखते हैं कोई है तो नहीं, है ना, फिर यूं निकालते हैं, एक लाइन पढ़ते हैं, मुस्कुराते हैं, है ना, और फिर जेब में रखते हैं, थोड़ी देर उसी 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 याद में काम करते रहते हैं, हथ कार्डे दिल यार्डे, है ना, और फिर थोड़ा मौका लगता है तो जैसे कोई आसपास नहीं है, निकाला, फिर देखा छुपा लिया, फिर देखा फिर छुपा लिया, तो कितनी बार, मोबाइल तो बेकार चीज है, मोबाइल देने से ही हाथ में लेना भी नहीं चाहिए, मैं मोबाइल रखता नहीं हूं, है ना, मोबाइल तो बीमारी है, बीमारी माना सबसे बड़ा इन्फेक्शन है ना, ये व्हाट्सएप वगैरह भी सब बीमारियां हैं, कभी नहीं लेना चाहिए, व्हाट्सएप इंटरनेट ये सब बेकार की चीजें है ना, ये सब बीमारी है, कभी इंटरनेट के जो हमारे भाई बहन है व्हाट्सएप के चक्कर, ये मोबाइल हमारा है ना, ये देखो बंद है, वैसे अभी तो बंद ही है, तो मतलब ये मोबाइल भी हमारा ऐसा वाला होना चाहिए, लाल बटन हरे बटन वाला ना, 1000 रुपए वाला ना, है ना, और वो भी इसको यूज नहीं करना चाहिए, है ना, मैं किसको अपना मोबाइल नंबर देता भी नहीं हूं, है ना, लैंडलाइन नंबर दिया था हॉस्पिटल का भी और वहां का भी घर का भी, किसको नहीं देता हूं, क्योंकि ये मोबाइल बिल्कुल बीमारी है, इसकी बुद्धि में जिसकी व्हाट्सएप में वो मैसेज भेजता है वो फिर मैसेज भेजते हो, भले आप विचार सागर मंथन, किसका विचार सागर मंथन, तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगा, अपना विचार सागर मंथन पैदा करो, अपनी घोट तो नशा चढ़े, दूसरे का घोटा हुआ तो आपके काम नहीं आएगा, अपना ही अपनी मुरली पे निकालो ना अपने पॉइंट्स, बाबा ने बुद्धि दी है ना, तो अपना घोटो, ठीक है, अपना घोटा याद रहता है, दूसरे घोटा याद नहीं रहता है, पक्का। तो ऐसे फिर बाप की छत्र छाया सदा ही अनुभव होती रहेगी, बाबा का साथ अनुभव होता रहेगा और निरंतर, और इसके लिए फिर बाबा ने जो चार नियम चार मर्यादाएं बताई हैं, अमृत वेला, कभी अमृत वेला मिस नहीं करो, पावरफुल होना चाहिए, मुरली कभी मिस नहीं, क्लास में जाके मुरली सुननी चाहिए, कई भाई बहन आजकल ये मोबाइल पे ही पढ़ते हैं मुरली ना, इंटरनेट पे, है ना, सुबह सुबह उठे इंटरनेट पे मुरली, चलो हो गया मुरली हो गई, तो आप नाश्ता करते तो इंटरनेट पे वो प्लेट निकाल लो अपनी ना, और हो गया नाश्ता, हो गया नहीं ऐसा, नाश्ते की प्लेट आती है ना इंटरनेट पे डालो ब्रेकफास्ट, है ना, तो आपकी प्लेट मोबाइल में आ जाएगी, देखो चलो हो गई मुरली, नाश्ता हो गया, लंच भी ऐसे कर सकते हो, फ्रूट भी खा सकते हो। क्लास में आने से क्या होता है, क्लास में वो जो मुरली जो भी सुना रही होती है बहन या भाई, उसके द्वारा बाबा शक्ति भी देता है धारण करने की। आप एक घंटा 45 मिनट बैठते हो, 45 मिनट बैठते हो, वो 45 मिनट अंदर शक्ति भी भर रही होती है। वो वायुमंडल है, वो डबिंग रूम है, एक्चुअली रिकॉर्डिंग रूम है। नहीं तो मुरली आपने पढ़ी, जहां आप मुरली बैठ के पढ़ रहे हो, आप 10 मिनट में मुरली, 15 मिनट में मुरली पढ़ लेते हो, और बीच में कोई बात बच्चा आके कान खींचता है, कभी पत्नी आके कान खींचती है, कभी कोई कान खींचता है, तो मुरली अंदर गई कहां, इधर गई कहां गई, है ना। बीच में किसका फोन आ जाता है ना, तो मुरली अंदर जाती है क्या? कोई मुरली अंदर नहीं जाती है। जैसे वो मोबाइल वाला खाना मोबाइल में रहता है, ऐसे ये भी खाना आपके अंदर नहीं जाता है, आत्मा का भोजन है ना ये। तो इसलिए अपने आप खुश नहीं करो कि मुरली मैंने मोबाइल पे पढ़ ली, कागज में पढ़ ली। कागज वाली मुरली तो हम रोज सुबह सुबह पढ़ लेते हैं, अमृत वेला करते हैं, किंतु मुरली में भी रोज जाते हैं। अब मतलब मैं शांतिवन में हूं, तो शांतिवन में मुरली में ना जाऊं हो नहीं सकता है। कितना भी कुछ हो, भले मेरे को तो बड़ी दादी थी ना, मैं जब मैं यहाँ हॉस्पिटल में 95 में आया, तो मैं कभी कभी मुरली में नहीं आता था सुबह, तो दादी शाम को यहाँ बैठी होती थी चांदनी चौक में। यह आपको पता है चांदनी चौक कहते हैं इसको ना, मधुबन ना, मारोशनी थी ना, चांदनी चौक कहते हैं। तो दादी भी कहती गुप्ता जी इधर आओ। मैंने कहा दादी हम शाम को योग के लिए आते हैं। दादी कहती गुप्ता जी सुबह क्लास में नहीं दिखाई दिए। मैं दादी उस समय ना सीरियस पेशेंट कोई आ गया था, हार्ट अटैक आया किसी को, तो मेरे को मैं मुरली के लिए निकल रहा तभी पेशेंट सीरियस आ गया। तो कहती अच्छा तो कितनी देर में पेशेंट ठीक हो गया था, स्टेबल हो गया? तो मैंने कहा दादी बस 7:30 तक ठीक हो गया था, 7:30 तक स्टेबल हो गया, दवाई ववाई देके पेशेंट पूरा स्टेबल हो गया था। तो कहते फिर क्यों नहीं आए, 7:30 बजे आ जाते। मैंने कहा दादी इस क्लास के बीच में आना चाहिए, कभी क्लास तो चालू हो गई तो अमर्यादा लगती है ना, अमर्यादित बिहेवियर हो गया, लेट नहीं, नहीं आपकी सीट सामने खाली है, आप खाली दो लाइन ना धारणा के लिए मुख्य सहारा है तो भी आप आ जाओ, उसमें वरदान स्लोगन नहीं होते थे, तो भी आप यहां के बैठ जाओ सामने, दो लाइन सुन के ही जाओ, पर आओ जरूर मुरली में। तो दादी ने मतलब दादी ने कहा नहीं मुझे आपको आना ही है, और सब जानते हैं कि डॉक्टर बिजी रहता है, तो डॉक्टर को कभी कोई, बल्कि डॉक्टर से ही सीखेंगे लोग कि हाँ देखो डॉक्टर देखो फिर भी रोज आता है इतना भी बिजी हो। तो आप जो आपके लिए डॉक्टर के लिए कभी भी मना नहीं है। मतलब मैं तो कहता हूं अगर आप मुरली में जाना क्लास में, चाहे आप आधा घंटा ही जाओ, 15 मिनट ही जाओ, पूरी जाओ तो बहुत अच्छी बात है, वो तो वंस इन अ वाइल होता है, महीने में एक दो दिन ऐसा हो जाएगा, किंतु 28 दिन तो ठीक होगा ना, तो रोज जाना चाहिए क्लास में, ठीक है। अगर 108 की माला में आना है, सॉरी 16108 की माला, तो बता चलो मैं बता देता हूँ एक बात भी लास्ट में, है ना, जो 8 की माला में कौन आते हैं, एक दिन में हम कितनी बार सांस लेते हैं, 16,000 सांस लेते हैं, 14 एक मिनट में, रात में 10 एक मिनट में, अगर सांस गिन के देखो तो 16,000 सांस बैठते हैं। तो जिनको श्वासों श्वास बाबा की मुरली और बाबा याद रहता है वो आते हैं, अष्टरत्न बनते हैं। दादियों को हमारे आधी रात भी उठा के पूछो ना बाबा ने क्या कहा था, बता देती है दादी जान के, देखो शाम को आके मुरली के सारे बातें बता जाती है, कभी देखो तो उनको मुरली सदा ही याद है, तो वो अष्टरत्न है। और जो दिन में 108 100 बार जो बाबा की मुरली रिवाइज करते हैं उनको जो है वो 108 की माला में आते हैं 100 बार, ठीक है, 100 बार माने घंटे में 6 बार, हर 10 मिनट में 1 बार, मतलब मुरली का एक पॉइंट निकाल के पढ़ सकते हैं 10 मिनट में ना, एक पॉइंट को फिर मनन चिंतन मंथन करो तो वो 108 की माला के दाने बनते हैं। और जो दिन में 8 बार करते हैं, 8 बार मतलब हर एक पहर 3 घंटे का होता है, हर पहर में एक बार बाबा की मुरली को रिवाइज करते हैं, मतलब सारी मुरली नहीं एक दो लाइन भी रिवाइज करते हैं, वो 16,108 की माला में आते हैं। और 9 लाख में कौन आते हैं, कौन आते हैं, जो कम से कम एक बार क्लास में आके रोज मुरली सुनते हैं सुबह 8 बजे 7 बजे। ये बाबा की मुरली के महावाक्य सुना रहा हूं मैं, कुछ और नहीं सुना रहा हूं। जो रोज मुरली में रोज सुबह 7 बजे की मुरली आके सुनते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं, वो आते हैं 9 लाख में, वो भी रॉयल प्रजा होती है ना, पहली प्रजा है ना। और जितने घंटे लेट मुरली में लेट उतने जन्म लेट, ये बाबा की मुरली है, ये बहन जी बता, दीदी बता सकती है ना, आपको पढ़ी होगी ना वो मुरली, बहने तो पढ़ती है ना, बहुत बार बार पढ़ती है, मैं तो मुरली की मुझे पाते रटी हुई है ना, पेज नंबर भी रटे हुए हैं ना। तो जो अगर आप मान लीजिए सोचते नहीं मैं 8 बजे जाके मुरली सुनेंगे तो 83 जन्म मिलेंगे, मतलब 1 जन्म कम हो जाएगा। और जो 9 बजे आएंगे 2 जन्म लेट, 10 बजे जाएंगे 3 जन्म लेट है ना, 11 बजे आएंगे 4 जन्म लेट, ठीक है सुना। भगवान को प्रायोरिटी दोगे तो आपको भी सत्युग में प्रायोरिटी मिलेगी। भगवान को नहीं, हम खाना वाना खा के नाश्ता करके काम वाम करके बच्चों को स्कूल भेज के तब हम जाएंगे, तो फिर भगवान भी कहते तो पीछे आ जाना साइड में। ठीक है, क्या समझे? तो अमृत वेला, मुरली, सारा दिन अटेंशन रखो, बाबा ने आज क्या कहा उस पर ध्यान चलो। चौथा, सोने के पहले लेटर लिखो बाबा को, पोता मिल पूरा दो, आज ये गलती हुई, अच्छा काम, ये क्या प्रोग्रेस और गलत, सब बाबा को लेटर लिख के साइन करके बाबा के पास दे दो लेटर, फाड़ के डस्टबिन डालो, फिर चार्ट भरो याद का, फिर मुरली पढ़ो, पूरी मुरली पढ़ो सोने के पहले। मैं हमेशा देख, मैंने जब से पूरी मुरली शुरू की मेरे को नींद बहुत अच्छी हो गई। पूरी मुरली पढ़ता हूँ, 10-12 मिनट लगते हैं पूरी मुरली पढ़ने में। पहले दिन में कई बार पढ़ी होती है इसलिए पढ़ती समझ अच्छी और अच्छी समझ आती है, और फिर 2 मिनट बाबा को याद करके सोचो। ये 4 नियम है सच्चे ब्राह्मणों के। ठीक है, उसकी उसको बाबा छत्र छाया के रूप में रहेगा, उसको बाबा से हर संबंध की अनुभूति होगी, राइट। और 4 परहेज, पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा, जितनी पवित्रता बढ़ेगी उतना अच्छा अमृत वेला होगा, उतनी मुरली अंदर जाएगी। और फिर वैध संकल्प भी अपवित्रता है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रही है, इसने ऐसा क्यों किया, ये भी अपवित्रता है, ड्रामा में उसका पार्ट है ना। आपको क्या मतलब पड़ा है, आपको डायरेक्टर बनाया गया भगवान ने, डायरेक्टरशिप आप है ना, तो आप एक्टर हो ना, साक्षी होकर देखो। फिर शुद्ध सात्विक भोजन, अंकुरित दलिया सब्जी फल, आसक्ति में भोजन नहीं खाने का है। रासिक भोजन पराठा पकौड़ा समोसा, आलस आएगा, अलबेलापन आएगा। तामसिक भोजन, कोल्ड ड्रिंक पियोगे, बिस्किट खाओगे, आइसक्रीम खाओगे, है ना, ये जो चाय कॉफी बहुत पियेंगे, लहसुन प्याज तो बहुत दूर की बात है, नॉनवेज तो बहुत दूर की बात है, किंतु ये भी खाने से अचार खाओगे तो क्या होगा, तामसिक है, उत्तेजना पैदा करेगा, अपने आप गुस्सा आएगा, इरिटेशन, जलन होगी, यहाँ पे उससे शांति से योग नहीं कर पाओगे। ठीक है, शुद्ध सात्विक सत्संग, एक बाबा और मुरली के अलावा कुछ मत करो। कुछ और किताब पढ़ूं, किसी गुरुजी की पढ़ूं, ये रामदेव की पढ़ूं, इसकी पढ़ूं, उसकी, किसी को कुछ मत पढ़ो ना, सोचो जो बाबा ने कहा आप सिर्फ मुरली में उसको ही फॉलो करो। और चौथा, दैवी गुणों की धारणा, कभी भी क्रोध मत करो, कभी भी चिंता मत करो, कभी भी उदास मत हो जाओ। एक बार उदास हुए 5 दिन तक आपका स्थिति बनेगी नहीं, एक बार गुस्सा के 3 दिन तक योग लगेगा नहीं, राइट। तो ये 4 परहेज करोगे तो अमृत वेला पावरफुल होगा, मुरली अंदर जाएगी, सारा दिन अटेंशन रहेगा, और सच्चाई से लेटर लिख पाओगे बाबा को, नहीं तो लेटर लिख नहीं पाते, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, उसने किया था, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, है ना, राइट। तो फिर आपको सच्चाई से लेटर नहीं लिख पाओगे। सच्चे दिल पर साहब राजी, जो अपनी हर बात सच्ची बाबा को बताता है, उसके दिल पर, उस दिल पर साहब राजी, वो सच्ची दिल है, ऐसे दिल में सदा दिल आराम रहता है। ओके, ओम शाम। मेरे को आज चांस मिला आने का, कृति बहन को बहुत बहुत थैंक्स।
हम सबके लिए भी ये बहुत अच्छा सुंदर मौका रहा, जब मीठे शांतिवन से स्पेशल हमारे क्लास के लिए आप यहाँ आए हैं। आपको हम सबकी तरफ से आपकी ऑस्ट्रेलिया की जर्नी के लिए भी बहुत बहुत मुबारक है, हैप्पी जर्नी, बॉन वर्ल्ड। और एक बार फिर सबकी तरफ से मैं बहुत बहुत तहे दिल से आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। बहुत गहराई में ले जा करके बहुत सारी बातों को हमारे सामने एकदम से स्पष्ट कर दिया है। सबके मुखड़े बता रहे हैं कि हाँ, दिल भरपूर हो गई है।